आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS रेडियो मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
दोस्तों, आज SBS हिंदी की लोकल टैलेंट सीरीज में एक मजेदार टैलेंट है हमारे सामने। जब आप रात को अपने बच्चों को कहानी पढ़कर सुनाते हैं तो कभी गौर किया है कि उसका इलस्ट्रेटर, जी हाँ, चित्रकार कौन होता है? कई बार वो चित्रकार आपके आसपास रहने वाले भारतीय मूल के लोग हो सकते हैं। ऐसे ही एक आर्टिस्ट हैं रुनोजय घोष, जो एडवर्टाइजिंग की दुनिया से धीरे धीरे आ चुके हैं बच्चों के लिए कहानियां लिखने और उनको रेखांकित करने पे। रुनोजय, SBS के हिंदी कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
थैंक यू।
जैसा मैंने अपने सुनने वालों को बताया, रुनोजय भारत से हैं और ऑस्ट्रेलिया में आकर बसे हैं। रुनोजय, भारत से ऑस्ट्रेलिया तक का सफर आपका कई देशों से होकर गुजरता है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे?
जरूर। मैं भारत में पैदा हुआ था, दिल्ली में 1978 में, और मेरे माँ बाप दोनों चित्रकार थे। मेरी माँ पेंटिंग सिखाती थी और इंग्लिश सिखाती थी स्कूल में, शी वॉज अ टीचर, और मेरे पिताजी एडवर्टाइजिंग में काम करते थे। तो मैं दिल्ली में स्कूल गया और फिर मेरे को बड़ा शौक था आर्ट में, और मैं उसके बाद कॉलेज ऑफ आर्ट में मैंने पढ़ाई की 2 साल, और उसके बाद मैं एडवर्टाइजिंग की दुनिया में घुस गया। तो दिल्ली में एडवर्टाइजिंग करी मैंने 3 साल तक, और उसके बाद मुझे लगा कि मुझे भारत से बाहर जाके अपना करियर ज्यादा बढ़ाना है। तो मैं भारत से निकला, फिर मैं गया इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया में मैंने काम किया एडवर्टाइजिंग एजेंसी में, और मेरा एडवर्टाइजिंग एजेंसी में करियर बड़ा अच्छा हुआ। तो वहां से मुझे जॉब अपॉर्चुनिटी मिली सिंगापुर में, फिर मैं सिंगापुर से गया न्यूजीलैंड, और 6 साल पहले मैं ऑस्ट्रेलिया सिडनी में आया एडवर्टाइजिंग के काम करने। तो 6 साल से मैं इधर हूँ और मुझे ऑस्ट्रेलिया बहुत पसंद है और मुझे लगता है कि अब मैं यहीं पे रहूंगा।
अच्छा, एक चीज बताइए, जब आप अपना कॉलेज ऑफ आर्ट्स में पढ़ाई पूरी कर रहे थे तो मेरे को जहाँ तक याद है आपने अपनी पढ़ाई कभी पूरी नहीं की, आप सीधे एडवर्टाइजिंग में चले गए, ऐसा क्यों किया?
तो मुझे लगा कि इंडिया में तो मतलब कॉलेज खत्म करना तो बहुत पढ़ाई पे बहुत एम्फेसिस है, पर मुझे लगा कि जो मैं सीख रहा था एडवर्टाइजिंग में वो थोड़ा पीछे रह गया था जो हमारी इंडस्ट्री जा रही थी। तो जो थ्योरी और प्रैक्टिकल जो होते हैं उसमें काफी डिफरेंस था। जो मैं काम देख रहा था टीवी पे और न्यूज़पेपर में, और वो बहुत ज्यादा एडवांस था। तो मुझे लगा कि मेरे को अपने लिए, मेरे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा कि अगर मैं जाके सीधा काम में लग जाऊं। और यह बहुत मुश्किल था मेरे पेरेंट्स को समझने के लिए कि मैंने ऐसा क्यों किया, पर मुझे अपने आप में बहुत विश्वास था और फाइनली उनको दे बिलीव्ड इन मी एंड दे बिलीव्ड इन मी, दे लेट मी डू इट, एंड बस मैंने कभी फिर पीछे नहीं देखा और मैं बस अपने करियर में आगे बढ़ता गया।
एडवर्टाइजिंग एक बहुत ही क्रिएटिव फील्ड है, ये तो हम सब मानते हैं, उसके साथ ही चित्रकारी, जैसा कि आपको बचपन से ही शौक था और जीन्स में है आपके चित्रकारी, जैसा आपने बताया एडवर्टाइजमेंट के साथ, तो बच्चों की किताबें इलस्ट्रेट और लिखना कब शुरू किया आपने?
तो ये बच्चों की किताबें लिखना शुरू मेरे ख्याल से जब मैं कहानियां बनाता तो शुरुआत से था, जब से बच्चा था। मेरे को लगता है सारे बच्चे बनाते हैं कहानियां अपने लिए, जब अपने वो लोग खिलौनों के साथ खेलते हैं या घर जाके अपने कमरे में बैठ रहते हैं तो सब अपने मन में कहानियां बनाते हैं, जब तो वैसा तो मैं करता था, पर जब मेरा बच्चा पैदा हुआ 6 साल पहले तो मैं हर रात को उसको कहानी पढ़ता था। तो कई बार वो एक ही कहानी बार बार पढ़ना चाहता था और मैं बहुत बोर हो गया था उसको एक ही कहानी पढ़ के। तो मैंने सोचा कि क्या पता अगर मैं कोशिश करता हूँ उसके लिए कहानी लिखने की, तो वहां से शुरुआत हुई। ये मेरे ख्याल से 5 साल पहले शुरुआत हुई होगी। मेरा पहली कहानी लिखी मैंने अपने बेटे के लिए, उसको पढ़ा पढ़ के सुनाता था और मैंने थोड़ी पिक्चर्स बनाए उसके लिए और उसको बड़ी पसंद आई। तो तब मैंने सोचा कि मैं कोशिश करता हूँ, क्या पता मैं भी कहानी छाप सकता हूँ उसके लिए, और जब वो बड़ा होगा ही विल बी वेरी प्राउड ऑफ मी कि उसके उसके लिए कहानी लिखी गई। तो दैट्स वेयर इट स्टार्टेड।
तो जो प्रेरणा है वो आपको आपके बेटे से मिली कहानी लिखने की और चित्रकारी करने की?
हाँ बिल्कुल। मैंने उसके लिए ये किया था।
और 2015 में आपकी किताब आई ऑली एंड द विंड, जो कि अपने आप में एक बड़ा मुकाम माना जाता है. पहली बार आप किताब लिख रहे हैं और वो भी पुरस्कार के लिए सम्मानित की जाती है, थोड़ा उसके बारे में बताएंगे.
हाँ, तो मेरी जो पहली कहानी थी ओली एंड द विंड, वो इंस्पिरेशन उसका था थोड़ा बहुत मेरे बारे में, क्योंकि जब मैं बचपन में बड़ा हो रहा था तो मैं बहुत टाइम स्पेंड करता था खुद खेलने के लिए और मैं अपनी इमेजिनेशन बड़ा यूज करता था. तो ओली एंड द विंड एक कहानी है एक छोटे से लड़के की जो एक छोटे से आइलैंड में रहता है और वहां पे हवा बहुत चलती है और हर समय वो हवा ओली का कुछ ना कुछ ले जाती थी. कभी पहले टोपी ले गई, फिर उसका स्कार्फ ले गई. और तो ओली सोचता है कि ये जो हवा है मेरे से ऐसे क्यों बर्ताव कर रही है, मेरे से मेरी चीजें क्यों लेके जा रही है. फिर एक दिन ओली को ध्यान आया कि ये जो हवा है वो उसको तंग नहीं करना चाहती, उसके बस सब खेलना चाहती है. तो फिर ओली उसके साथ कोशिश करता है दोस्ती करने के लिए हवा से. तो वो अपना चेस सेट लेकर आता है पर हवा चेस सेट से नहीं खेलती है. फिर वो बॉल के साथ खेलने की कोशिश करता है हवा से पर हवा उसके साथ बॉल से भी नहीं खेलती है. फिर फाइनली एक रात को उसको आइडिया आता है कि क्या पता मैं पतंग उड़ाऊं. और वो भी इंस्पिरेशन थी इंडिया से, जब 15 अगस्त को पतंग उड़ाते थे छत पे तो बड़ा मजा आता था. सो ऑल दीज थिंग्स इंस्पायर्ड मी टू यू नो टू डू द स्टोरी. एंड इवेंचुअली स्टोरी में ओली और जो हवा है वो दोस्त बनते हैं और ओली पतंग उड़ाता है और हवा बड़ी खुश होकर पतंग के साथ खेलती है.
अच्छा, अब जानना चाहूंगा कि आपकी हाल ही में एक किताब आई है ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी बच्चों के लिए किताब लिखने वाली जो हस्ती हैं मैम फॉक्स के साथ, वो कैसे हुआ?
जब लोगों ने मेरी किताब देखी और मेरे इलस्ट्रेशन देखे तो काफी सारे पब्लिशिंग हाउसेस इंटरेस्टेड थे मेरे साथ काम करने में और मेरी किताब पब्लिश करने में. तो वन ऑफ द पब्लिशिंग हाउसेस वॉज स्कॉलास्टिक और मैम फॉक्स ने उनको ये कहानी दी थी करने के लिए कुछ साल पहले. तो स्कॉलास्टिक ने मुझे अप्रोच किया थ्रू माय लिटरेरी एजेंट फ्रॉम कर्टिस ब्राउन और मुझे हम छुट्टी पे थे एक बारी, मेरे ख्याल से टास्मेनिया में हम एक रोड ट्रिप ले रहे थे और गाड़ी में थे और मुझे फोन आया मेरे एजेंट से और उसने बोला कि देखो ये मैम फॉक्स की एक किताब है, हमें लगता है कि बड़ी इम्पोर्टेंट किताब है, तुम इंटरेस्टेड हो करने में? और मैंने बोला जरूर. और जब मैंने शब्द पढ़े इट वॉज अ वेरी मूविंग और मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ के कि ऑस्ट्रेलियन जो डाइवर्सिटी है और मल्टीकल्चरलिज्म है, हम बहुत यू नो उसको सेलिब्रेट करते हैं और यहाँ पे बहुत देशों के लोग रहते हैं और जो ऑस्ट्रेलियन देमसेल्व्स बहुत वेलकमिंग लोग हैं. तो मेरे को बिल्कुल एकदम लगा कि मेरे को इस किताब का जरूर पार्ट होना पड़ेगा. तो मैं बहुत ऑनर्ड था कि उन्होंने मुझे अप्रोच किया और मैंने फिर बड़ी मेहनत करके भी बहुत ड्राइंग्स बनाए और उनको एक डिफरेंट अप्रोच चाहिए था ऑस्ट्रेलिया का. लोगों को एक यू नो माइंड में बड़ा सेट आइडिया है ऑस्ट्रेलिया का कि यहाँ पे लोग बस सर्फ करते हैं और बारबेक्यू करते हैं और बीच पे रहते हैं, विच इज यू नो विच इज देयर, पर उनको एक अलग नजरिया चाहिए था. और मैंने बड़ी सोच समझ के दूसरे चीजें दिखाने की कोशिश करी ऑस्ट्रेलिया की और कैप्चर करने की कोशिश किया, जैसे कि यू नो मेरे को यहाँ के स्काई बड़ा इंस्पायर करते हैं, ब्लू स्काइज और कलर्स और जानवर लाइक कॉकटूज. तो मैंने ये सब अपने स्टोरी में और इलस्ट्रेशन में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करी.
रोनू, जो आने वाले प्रोजेक्ट क्या हैं आपके?
अभी मैं कुछ दो और किताबों पे काम कर रहा हूँ. एक अपनी किताब मैं लिख रहा हूँ जो एक शेर के बारे में है और वो शेर दुनिया में घूमना चाहता है पर लोग उससे बहुत डरते हैं. तो वो कैसे अपने दुनिया में घूमता है विदाउट पीपल गेटिंग स्केयर्ड ऑफ हिम, तो वो एक कहानी पे मैं भी काम कर रहा हूँ. और एक मैं दो डिफरेंट राइटर्स के साथ एक और किताब पे काम कर रहा हूँ, बहुत मजेदार किताब है अबाउट अ पैंडा. तो ये दो प्रोजेक्ट्स हैं मेरे अभी जिनपे यू नो टाइम स्पेंड कर रहा हूँ और ड्राइंग्स बना रहा हूँ और सोच रहा हूँ. तो या द फ्यूचर इज लुकिंग गुड एंड एक्साइटिंग.
रोनू, SBS हिंदी में बात करने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.
थैंक यू अमित. SBS हिंदी को मुझे बुलाने के लिए बहुत धन्यवाद और मेरे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया.
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद. हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।